विधाता भवहरता मुक्ति विधाताओ, मैं नमो तुम्हें मेरे स्वामी, मुझको भी सिद्धि प्रदाताओ। वही राजग्रही नगरी धन्य त्रैलोक्य गुरु जहाँ थे जन्मे, है धन्य सुमित्र पिता माता सोमा भी धन्य हुई जग में। चलो राजग्रही तीर्थ की जय। भव्यात्माओं, जैन शासन के वर्तमान युगीन बीसवें तीर्थंकर भगवान मुनि सूरतनाथ का चरित्र आप सब सुन रहे हैं, इसलिए यह भगवान मुनि सूरत पुण्य चरित्र व्याख्यान माला के नाम से ही क्लास चल रही है। प्रथमान योग का चरित्र होते हुए भी आपको करणान योग चरणान योग सब कुछ इसके अंदर समाविष्ट दिखाया जाता है। कैसा होता है कर्म सिद्धांत और किस प्रकार से एक मानव के मन में जब परिवर्तन आता है तो चरणान योग बताता है कि वह कहां से कहां पहुंच जाते हैं। एक राजा की पर्याय से सुख वैभव को छोड़ करके भी तपस्या करके और महामुनि बनकर के प्राणतेंद्र इंद्र की पर्याय से आप राजग्रही नगरी में माता सोमावती के गर्भ में आ गए और माता सोमावती पुत्र को पा करके धन्य धन्य हुई। पिता सुमित्र महाराज ने किमिच्छक दान बांटा और इससे ज्यादा भला माता पिता या नगरी के लोगों को खुशी क्या हो सकती है, जहां तीर्थंकर पुत्र जन्मे हो वहां तो साक्षात इंद्र खड़ा है और उसने नगरी को सजाया है। धनपति कुबेर हर वक्त इंद्र के आदेश पर तैयार रहता है। रत्नों से पूरे नगर को एकदम स्वर्णमय रत्नमय कर देता है और हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। सबके धन धान्य के कोठार भर जाते हैं। ऐसी समृद्ध नगरी राजग्रही के अंदर एक युवराज के रूप में शिशु से बाल्यावस्था में आते हैं और मुनि सूरतनाथ अपने मित्र सखाओं के साथ देव बालकों के साथ खूब अच्छी क्रीड़ा करते हैं उद्यान में। देव बालक भी उनके साथ क्रीड़ा करके अपने को धन्य धन्य मानते हैं। तो महानुभाव नील वर्ण का शरीर होते हुए भी अत्यंत सुंदर भगवान मुनि सूरतनाथ के लिए आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं बृहद स्वयंभू स्तोत्र के अंदर, परिणत सिक कंठ रा गया कृत मद निग्रह विग्रह भया, तव जिन तप सा प्रसूतया ग्रह परिवेश रुचि शोभितम। अर्थात हे मुनि सूरत जिनेन्द्र, आपका शरीर परिणति शिख कंठ रा गया, क्या कहते हैं युवा मोर के कंठ के नीले रंग के समान आपका सुंदर नीलमणि का शरीर था, नीलमणि के समान सुशोभित आप कृत मद निग्रह विग्रह भया, अर्थात कामदेव के मद को जीतने वाले ऐसे परम शांत शरीर की दीप्ति से तपसा प्रसूतया और तप के द्वारा जो उत्पन्न हुई परम शोभा सौंदर्य उससे ग्रह परिवेश रुचायुव, अर्थात पूर्ण चंद्रमा के मंडल चंद्रमंडल की चमक के समान शोभितम। सुशोभित होता था। भगवान इस प्रकार से चंद्र मंडल के समान हमेशा कांतिमान सुशोभित होते थे, चाहे वो बालकों के साथ खेल रहे हैं, चाहे पालने में झूल रहे हैं, और चाहे धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त होते हैं। हे मुनि सुरतनाथ भगवान, आपकी परमोदारिक शरीर की अपूर्व महिमा अचिंत्य महिमा, इस महिमा का वर्णन तो देव इंद्र कोई कर ही नहीं सकते। आपके शरीर का मोर के कंठ का नीला रंग होता है। आपने कामदेव को जीत लिया, यानी विवाह करने के बाद भी भगवान मुनि सुरतनाथ ने जब वैराग्य हुआ तो सब कुछ जीत लिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। इसलिए आपके शरीर में ब्रह्मचर्य पने की परम शांत निर्विकार आभा दिखाई दे रही है, ये कहते हैं आचार्य समंत भद्र स्वामी। न्याय के परम ज्ञाता, आपने जो परम शुक्ल ध्यान से तप किया उसके प्रभाव से शरीर में सात धातुएं नहीं रही, अशरीरी बन जाते हैं, तो पूर्ण रूप से शरीर का त्याग होकर अमूर्तिक आत्मा में लीन हो जाते हैं। लेकिन तीर्थंकर अवस्था में भी भगवान के शरीर में मल मूत्र नहीं होता। आपका शरीर स्फटिक मणि के समान एकदम निर्मल हो गया, ऐसा चमकदार शरीर था जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अपने परिवेश मंडल के साथ सुशोभित होता है। इस प्रकार से आत्मस्वरूप में स्थित भगवान मुनि सुरतनाथ के लिए कहा, सर्व लक्षण संपूर्णम निर्मले मणि दर्पणे संक्रांति बिंब सादृश्यम शांत संचेत भूतम। अर्थात आपका अरहंत अवस्था का शरीर सर्व लक्षणों से पूर्ण परम शांत अद्भुत ऐसा सुशोभित होता है जैसे निर्मल मणि के दर्पण में उकेरी हुई शांत मूर्ति हो। वास्तव में अरहंत भगवान के शरीर की महिमा वचनों के अगोचर है, वचन सीमित है, और भगवान के शरीर और भगवान के गुणों की महिमा अनंत है, उनको वचनों के द्वारा कैसे कहा जा सकता है। लेकिन वचनों के द्वारा कहने से अपने वचन पवित्र हो जाते हैं, अपनी आत्मा पवित्र हो जाती है, अपने पाप कर्मों की निजरा हो जाती है, अपने पुण्य कर्म का बंद हो जाता है। इसलिए भगवंतों के निर्मल गुणों की स्तुति की जाती है। ऐसे राजग्रही में जन्मे भगवान मुनि सुरतनाथ, उनके कहते हैं कि उनके कुमार काल के 7500 वर्ष बीत जाने पर उनका राज्याभिषेक होता है, यानी युवराज अवस्था में महाराज सुमित्र इंद्र के सहयोग से मुनि सुरतनाथ का विवाह रचाते हैं और एक सुंदरी कन्या उनके गले में वरमाला डालती है। वे संसार के सुखों का उपभोग करते हैं, अनेक पुत्र पुत्रियों के पिता बन जाते हैं और पुनः राज्य का भार महाराजा सुमित्र ने मुनि सुरतनाथ तीर्थंकर युवराज के ऊपर डालते हैं। अपना मुकुट युवराज मुनि सुरतनाथ को पहना करके उन्हें राजा बना देते हैं। ये दृश्य आप पंच कल्याणक में देखते हैं। जब तीर्थंकर भगवान का राज्याभिषेक होता है, 32 देशों के राजा आते हैं, भेंट लेकर के आते हैं और भगवान के चरणों में अपनी अपनी भेंट समर्पित करके उनके राज्याभिषेक में भाग लेते हैं। जब किसी का भी कोई कार्यक्रम होता है, मान लो कोई पुण्यात्मा की दीक्षा हो रही होती है या किसी गृहस्थ का विवाह हो रहा होता है, तो तमाम रिश्तेदार आते हैं। तो राजाओं के रिश्तेदार कौन होते? राजा तीर्थंकर भगवान के पिता के रिश्तेदार तो पूरा धरती मंडल था। मंडलीक महामंडलीक सभी राजा आकर के मुनि सुरतनाथ के राज्याभिषेक में सम्मिलित होते हैं और उसके बाद कोई ना कोई वैराग्य का निमित्त बनता है। होता तो उनके जीवन काल में बहुत दिनों के बाद है, लेकिन हम पंचकल्याण के अंदर तीसरे ही दिन इस दृश्य को देखते हैं, क्योंकि 5 दिनों में पंचकल्याण संपन्न हो जाता है। कहीं कहीं 6 दिन 7 दिन भी कर लेते हैं तो 2 दिन तक जन्म कल्याणक या गर्भ कल्याणक को कर लेते हैं, लेकिन दीक्षा कल्याणक तीसरा कल्याणक है और उसी दिन राजसभा लगती है, उसके बाद निमित्त उपस्थित होता है। भगवान ऋषभ देव के लिए निमित्त उपस्थित हुआ नीलांजना अप्सरा का नृत्य, उसकी मृत्यु और मुनि सुव्रतनाथ भगवान के जीवन में उनके वैराग्य का दृश्य क्या उपस्थित हुआ आप लोगों को बता देती ताकि याद रहे। एक बार क्या होता है कि जब उनके 15,000 वर्ष बीत गए, तब एक दिन गर्जती हुई घन घटा के समय पता चला कि आपके याग हस्ती ने यानी हाथी ने वन का स्मरण करते हुए ग्रास उठाना ही छोड़ दिया, ने खाना पीना बंद कर दिया। पता नहीं उस हाथी को क्या हो गया है। महावत ने आकर के बताया, महाराज आपके प्रिय हाथी ने खाना पीना छोड़ दिया है। महाराज मुनि सुव्रतनाथ सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। तब अपने अवधि ज्ञान को लगाकर चिंतन करते हैं, अरे ये हाथी अपने पूर्व भव के संस्कारों के कारण कुछ यहाँ पर जो है इसने खाना छोड़ दिया, इसका कारण क्या है। तो उसका कारण सारे सभासदों को बताते हैं कि पूर्व भाव में यह हाथी तालपुर नगर का राजा था और वहां पर इसे बड़ा अपने उच्च कुल का अभिमान था। अभिमान के कारण वह अपने परिणामों को बहुत कलुषित रखता था। वह समझता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वही ठीक है, अच्छे खराब सभी लोगों को दान दिया करता था, खोटे खोटे लोगों को भी वह पात्र पात्र नहीं सोच करके और उसे दान देता कि मिच्छक दान देता, मिथ्या ज्ञान से मोहित होता। जो भी आते उसके नगर में उनको खूब किमिच्छक दान बांट करके और सदाचारियों की वह अनुमोदना नहीं कर पाता था, उनकी इज्जत नहीं कर पाता था, उनका मूल्यांकन नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे अपना राजमद था, अपने कुल का अभिमान था और उसी के फल से यह हाथी हुआ है। ये सारे सभासदों को कौन बता रहा है, मुनि सुव्रतनाथ। भगवान राजसभा में बैठे हैं और उन्हें जन्म से ही अवधि ज्ञान था, वे बता रहे हैं। तो क्या हुआ, सब लोग कुतूहल बस पूछते हैं, महाराज इसीलिए हाथी ने खाना पीना छोड़ दिया है। महाराज कहते हैं कि देखो आज भी यह हाथी अपने अज्ञान से मोहित हो रहा है, वो उद्यान को ही देख रहा है, उसे कोई सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा है, ये इसके कर्म का उदय है। और इतना जैसे उस हाथी ने मुनि सुव्रतनाथ अवधिक ज्ञानी महाराज से सुना, एकदम उसको जाति स्मरण हो गया, अरे मैं कितना अज्ञान में पड़ा था, मैं किस प्रकार से अपने अभिमान के अंदर चूर था और मैं हाथी बन गया, कहाँ राजा और कहाँ हाथी, मैं हाथी बन गया हूँ। वह बेचारा आंसू गिरा करके और अपने भाव को अभिव्यक्त कर रहा था कि महाराज अब मैं सम्यक दृष्टि बन रहा हूँ, अब मैं अणुव्रतों को धारण कर रहा हूँ। राजा मुनि सुव्रतनाथ उस हाथी को संबोधित करते हैं और उसको अणुव्रत ग्रहण करा देते हैं। देखो आपको दृश्य दिखाए जा रहे हैं और उस अपने पूर्व भाव की पर्याय की निष्फलता पर चिंतन करता हुआ अब वो अणुव्रती बन जाता है। जब ये दृश्य देखते हैं महाराज मुनि सुव्रतनाथ तो उनके मन के अंदर भी विरक्तता आती है, एकदम वैराग्य हो जाता है। देखो कहां राजा से हाथी हो गया और आज इस हाथी को जब मैंने संबोधन दिया है तो ये अनुव्रति बन गया है। एक तिर्यंच जीव भी अनुव्रति बन सकता है, पंचम गुणस्थान हो सकता है, और वह पंचम गुणस्थान वर्ती हाथी बन गया। लेकिन अपने पूर्व भाव का स्मरण कर करके उसे बहुत ही पश्चाताप हो रहा है, और वो भगवान महाराज के सामने अपने पश्चाताप के अश्रु गिरा रहा है। अभ्यात्माओं, जब पश्चाताप हृदय में हो जाए तभी समझो कि जीवन का कल्याण हो जाता है, और जब तक आत्मबोध नहीं होता व्यक्ति पर में रमा रहता है, वह आत्म तत्व का चिंतन ही नहीं कर पाता, उसे संबोधन नहीं मिल पाता। महाराज के संबोधन से हाथी उधर सुधर जाता है, और हाथी की पर्याय से उधर देखते हैं, हाथी के इस चिंतवन से महाराज मुनि सूरत के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। यद्यपि उन्हें तो अवधर्म तीर्थ का प्रवर्तन करना ही था, तो ये निमित्त मिल गया, हाथी का निमित्त मिल गया, बस महाराज मुनि सूरत नाथ को एकदम वैराग्य हो गया। वे उस राजसभा के अंदर घोषणा करते हैं, अपनी राजसभा के अंदर अपने पुत्र युवराज को राजा बना करके और दीक्षा लेने के लिए विचार करते हैं। आप देखते ही होंगे कि जब दीक्षा का विचार तीर्थंकर महाराज करते हैं, उसी समय स्वर्ग से लोकांतिक देव आ जाते हैं। सफेद सफेद वस्त्रधारी लोकांतिक देव हाथों में पुष्पांजलि लिए हुए आते हैं, भगवान के सामने पुष्पांजलि छोड़ते हैं। ये लोकांतिक देव ध्यान रखना किसी कल्याणक में नहीं आए, ना गर्भ कल्याणक में, ना जन्म कल्याणक में, केवल दीक्षा कल्याणक में आते हैं। और पांचवे स्वर्ग में ब्रह्म लोकालिया लोकांतिका, ब्रह्म लोक के अंत में ये जन्म लेते हैं और एक भवावतारी होते हैं। ये केवल दीक्षा कल्याणक में आते हैं, भगवान महाराज के चरणों में पुष्पांजलि छोड़कर साष्टांग नमस्कार करने लगते हैं। तीर्थंकर के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, हे भगवान, आपने दीक्षा लेने का विचार करके धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने का जो चिंतन किया है, आपकी हम अनुमोदना करते हैं। कोई लोकांतिक देव कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। सारस्वतादित्य वन्य अरुण गर्तो इतिष्ठा व्यावाधारिष्टाश्च, इस सूत्र के द्वारा आप सुनते ही होंगे, आठ प्रकार के लोकांतिक देव होते हैं, और ये आठों ही आकर के देखो भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान समझ गए कि इनके भी लोक का अंत आ गया है और मेरे भी लोक का अंत आ गया है। अपनी रानियों से, अपने पुत्र से, सभी से विदा लेते हैं, और उनके लिए पुनः पालकी आ जाती है। भगवान का जन्म वैशाख कृष्णा दशमी को हुआ, और वैशाख कृष्णा दशमी के ही दिन उनको वैराग्य हुआ, उन्होंने दीक्षा धारण की। कई कई ग्रंथों में वैशाख कृष्णा बारस भी आती है, लेकिन अधिकतर प्रचलित पूजाओं में वैशाख कृष्णा दशमी को जन्म, वैशाख कृष्णा दशमी को ही तप कल्याणक मनाया जाता है। तो दीक्षा के लिए लोकांतिक देव तो आए, और देवता मनुष्य सभी लोग पालकी लेकर के चलते हैं। नील वन में जाकर के चंपक वृक्ष के नीचे दीक्षा धारण कर लेते हैं। यह है भगवान मुनि सूरत नाथ का के जीवन चरित्र का वैराग्य पक्ष। ऐसे ही मुनि सूरत नाथ भगवान का चरित्र चित्रण इसलिए कराया कि उनके जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे मंदिरों का निर्माण करने वाले महान पुण्य के भागी होते हैं, महान पुण्यवान होते हैं। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, सरसों के बराबर प्रतिमा, धनिया पत्ते के बराबर मंदिर का निर्माण करने वाला जो पुण्यशाली होता है, उसके पुण्य की तुलना किसी भी पुण्य से नहीं की जा सकती है। ऐसी तुलना आज भी हम करते हैं उनके पुण्य की, जो जिन मंदिर बनाते हैं, जो प्रतिमा का निर्माण करते हैं। आज भी लोग यहाँ आते हैं, चाहे छोटी छोटी प्रतिमा विराजमान करें, लेकिन लोगों की भावना रहती है कि हम शाश्वत तीर्थ अयोध्या में अपनी ओर से एक प्रतिमा तो कम से कम विराजमान कर दें। तो महानुभाव उस मंदिर के निर्माण की बेला में और भगवान मुनि सूरतनाथ की वेदी देख देख करके ऐसी प्रसन्नता होती है कि जिस दिन भगवान इसके अंदर विराजमान हो जाएंगे इस मंदिर की शोभा एकदम इसके अंदर चार चांद लग जाएंगे। ऐसे शनि ग्रह के अरिष्ट निवारक भगवान मुनि सूरतनाथ युग युग तक जीवंत रहे और भव्यों की पुण्य की वृद्धि में निमित्त बने, यही आप सबके लिए कहना है और भगवान की चरणों में प्रार्थना है। हम सबके भी पुण्य की वृद्धि हो, हमें भी व्रतों को धारण करने की और उनमें दृढ़ रहने की भावना दृढ़ता प्राप्त हो, यही भगवान मुनि सूरतनाथ हमें प्रदान करें। जय लो मुनि सूरतनाथ भगवान की जय।